सफा नंबर 332, माखज बाब 8, नंबर 1। शेख अता मोहम्मद के सर्वस बुक के मुताबिक वो पेंशन पाकर 22 सितंबर 1912 को मुलाजमत से सपदोश हुए जब अंग्रेजी हुकूमत की अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो इन्हें फिर मुलाजमत पर वापस बुला लिया गया और 1.5-2 साल बाद गलबन 1919 में फारग होकर घर आए। खत शेख इजाज अहमद बनाम राकम। नंबर 2, पंजाब गजट 17 अप्रैल 1908, हिस्सा अव्वल सफा 210। नीज देखिए इकबाल रिव्यू जनवरी त मार्च 1985, मजमून इलामा इकबाल का सिलसिला मुलाजमत इज हसन अख्तर, सफात 128, 129, 130। नंबर 3, सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफा 55। नीज देखिए रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुगताई, सफात 76, 77, 104, 105। मलफूजात इकबाल मरतबा अबुल लैस सदीकी, सफा 84। जिक्र इकबाल इज अब्दुल मजीद सालक, सफात 63-64। नंबर 4, इकबाल के खतूत और तहरीरें मरतबा बशीर अहमद डार अंग्रेजी, सफा 62। इकबाल के वालिद का नाम गलती से मीर मोहम्मद लिखा गया है। नंबर 5, सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफा 55। रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुगताई, सफात 104-105। नंबर 6, मलफूजात इकबाल मरतबा अबुल लैस सदीकी, सफात 86-87। नंबर 7, इकबाल इज अतिया बेगम अंग्रेजी, सफा 36। नंबर 8, इकबाल के खतूत और तहरीरें मरतबा बशीर अहमद डार अंग्रेजी, सफात 43-48। पंजाब गजट 21 मई 1909, हिस्सा अव्वल सफा 415। तारीख गवर्नमेंट कॉलेज इज गैरट अंग्रेजी, सफा 115। नंबर 9, पंजाब गजट 5 नवंबर 1909, हिस्सा अव्वल सफा 809। सर्वस की तारीख अंग्रेजी 1 जुलाई 1909, सफा 329। नंबर 10, बयानात मियाँ एम असलम और मौलवी मोहम्मद अली कसूरी, जाम 9, असलम नंबर अप्रैल व मई 1971, जिल 21, नंबर 1-2, सफा 86। रावी इकबाल नंबर अप्रैल 1974, सफा 18। नंबर 11, इस कानूनी जर्नल के चीफ एडिटर एस डी चौधरी थे। नंबर 12, रसाला अंजमन इस्लामिया पंजाब जनवरी त जून 1909, सफा 15। सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 195-196। नंबर 13, आईना इकबाल मरतबा अब्दुल्ला क्रेशी, सफात 200-206। नंबर 14, एजन सफात 207-209। नंबर 15, एजन सफात 234-235। नंबर 16, जहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफा 114। नंबर 17, एजन सफात 83-84। नंबर 18, इकबाल इज अतिया बेगम अंग्रेजी, सफा 53। नंबर 4, नंबर 19, एजन सफा 55। नंबर 20, इकबाल और हैदराबाद दक्कन तलीफ नजर हैदर आबादी, सफा 18। नंबर 21, मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी, सफा 91। ये खत शेख अताउल्ला मरतब इकबाल नामा को मदीर शहाब हैदराबाद दक्कन से मिला था, जिनके हाँ ये एक बिस्किट फरोश की दुकान से पुड़िया की सूरत में पहुंचा था। नंबर 22, इकबाल और बजमे इकबाल हैदराबाद दक्कन इज अब्दुल रऊफ अरूज, सफात 21-22। नंबर 23, सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 105-106। नंबर 24, मखजन जून 1910। नंबर 25, मकातीब इकबाल बनाम ग्रामी मरतबा अब्दुल्ला कुरैशी, सफा 220। सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफात 73-76। नंबर 26, मखजन जून 1910। इस कसीदे के इब्तदाई 9 शेर नमूदे सुबह के अनवान के तहत बांगे दरा में शामिल हैं। नंबर 27, इन अयाम में शेख अता मोहम्मद की तैनाती मिलिट्री वर्क सर्विस के बम्बई डिस्ट्रिक्ट की देवलाई छोनी में थी। मालूम होता है कि वो इकबाल से मिलने हैदराबाद पहुंचे और फिर वहां से दोनों भाई इकट्ठे औरंग आबाद गया। खत शेख इजाज अहमद बनाम राकम। नीज देखिए खत इकबाल बनाम अकबर अलाबादी इकबाल नामा मरतबा शेख अता उल्ला हिस्सा दोम सफ़ा 43। नंबर 28, इकबाल इज अतिया बेगम अंग्रेजी सफात 53-62-63। नंबर 29, इकबाल और अंजमन हमायत इस्लाम इज मोहम्मद हनीफ शाहिद सफात 50-51। नंबर 30, ये अंग्रेजी नोटबुक राकम ने मरतब करके शाया कर दी है। इसके उर्दू तर्जमे के लिए देखिए शजरात फिक्र इकबाल इज इफ्तार अहमद सदीकी नंबर 31 मलफूजात इकबाल मरतबा अब्दुल लैस सदीकी सफ़ा 85-86 नंबर 32 इकबाल इज अतिया बेगम अंग्रेजी सफ़ा 52 नंबर 33 पंजाब गजट 20 जनवरी 1911 हिस्सा अव्वल सफ़ा 32 रावी जनवरी 1911 जिल्द नंबर 5 नंबर 36 सफ़ा नंबर 2 नंबर 34 जामे 9 असलम नंबर अप्रैल व मई 1971 सफ़ा 86 नंबर 35 अजमत रफ्ता इज़ ज़ियाउद्दीन बरनी सफ़ा 271 नंबर 36 सहीफा इकबाल नंबर हिस्सा अव्वल सफ़ात 21-28 नंबर 37 पंजाब गज़ट 4 मार्च 1910 हिस्सा अव्वल सफ़ा 130 1911 में जब मुसलमानों के तलीमी मसाइल पर गौर व फिक्र के लिए पंजाब प्रोवेंशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कायम हुई तो इसके 15 अप्रैल 1911 के इजलास में इकबाल को सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का बाद में अंजुमन हमायत इस्लाम से हिलाक हो गया। इकबाल 3 साल तक कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते रहे। अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफात 295-300 सफ़ा नंबर 335 नंबर 38 एजन सफात 24-25 नंबर 39 पंजाब गजट 28 मार्च 1919 हिस्सा सोम सफात 472-473 15 अगस्त 1919 हिस्सा सोम सफा 112 नंबर 40 पंजाब गजट 4 मई 1923 हिस्सा सोम अलफ सफा 140 नंबर 41 पंजाब गजट 9 जनवरी 1925 हिस्सा सोम अलफ सफा 71 नंबर 42 कार्रवाई इजलास पंजाब टेक्स्ट बुक कमेटी फाइल नंबर 1237-1924 उर्दू कोर्सेज नंबर 43 अनवार इकबाल मरतबा बशीर अहमद डार सफ़ा 25 नंबर 44 इकबाल का खतूत और तहरीरें मरतबा बशीर अहमद डार अंग्रेजी सफ़ात 98-101 नंबर 45 सीरत इकबाल इज तहर फरूकी सफ़ा 47 उर्दू मुसफ़ा बाबाए उर्दू के खतूत का मजमूआ इकबाल का खत बनाम मुजफ्फरुद्दीन कुरैशी सफ़ात 112-117 नंबर 46 रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुगताई सफ़ात 98-141 मिर्ज़ा जलालुद्दीन के बयान के मुताबिक वो मुकाम शाहदरा का था लेकिन यह गलत है। मुलाहजा हो इकबाल इज़्ज़तिया बेगम अंग्रेजी सफ़ा 74 नंबर 47 फजल हुसैन एक सियासी बायोग्राफी अंग्रेजी सफ़ात 96-98 नंबर 48 रवायात इकबाल मरतबा अब्दुल्ला चुगताई सफ़ात 132-134 नंबर 49 फजल हुसैन एक सियासी बायोग्राफी अंग्रेजी सफ़ा 157 इकबाल के आखिरी 2 साल सफ़ा 274 नंबर 50 तारीख इंडियन नेशनल मूवमेंट इज वी लोवट अंग्रेजी सफ़ा 57-58 63-65-66-88 मनकसम हिंद इज़ राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी सफ़ा 117 मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल इज तुफैल अहमद सफ़ात 474-475 नंबर 51 मकालात शिबली जिल्द 8 सफ़ा 148 नंबर 52 मलफूजात इकबाल मरतबा अब्दुल लैस सदीकी सफ़ा 96 नंबर 53 इकबाल और अंजमन हमायत इस्लाम इज़ मोहम्मद हनीफ शाहिद सफ़ात 81-82 शेख एजाज अहमद भी इस जलसे में मौजूद थे। इनके बयान के मुताबिक इकबाल ने शिकवा सुनाने से बेशतर जो नज़म पढ़ी इसके 3 अशार हजफ करके और पहले शेर के पहले मिसरे को बदल कर बांगे दरा में नसीहत के अनवान से तहत शाया की। इसके नज़म के बाद अशार अपनी असली हालत में यूं थे कुल मिला मुझसे जो इकबाल तो पूछा मैंने आमल रोज़ा है तो और ना पाबंद नमाज कभी एरां के लिए हो जो दुआ का जलसा अजर तेरा है कि है मेरी तबीयत नासाज सुन के कहने लगा इकबाल बजा फरमाया शक मुझे आपकी बातों में नहीं बंदा नवाज मुझ में औसाफ ज़रूरी तो है मौजूद मगर है कमी एक कहूँ तुझसे जो हो फाश नाराज ढब मुझे कौम फरोशी का नहीं याद कोई और पंजाब में मिलता नहीं उस्ताद कोई। शेख एजाज अहमद की राय में ये अशार पब्लिक में सुनाने की आइंदा ज़िंदगी में इकबाल को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। राकम के ख्याल में इसकी वजह यह थी कि इन अशार का इशारा गलबन मियाँ सर फजल हुसैन की तरफ था। नंबर 54 मलफूजात इकबाल मरतबा अब्दुल लैस सदीकी सफ़ा 34 नंबर 55, रोजगारे फकीर जिल्द अव्वल सफ़ा 123। नंबर 56, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफ़ा 37-38। नंबर 57, कुलियात इकबाल मरतबा अब्दुल रजाक हैदराबाद दक्कन 1923 सफ़ात 50-58। ये किताब बांगे दरा की इशात से बेशतर इकबाल की इजाज़त के बगैर शाया कर दी गई। तस्फीये की शरायत के तहत मरतब को 1,000 रुपये की रकम बतौर मुआवजा अदा करनी पड़ी और किताब की फरोख्त रियासत हैदराबाद दक्कन तक महदूद कर दी गई। इसका एक नुस्खा अल्लामा इकबाल म्यूजियम में महफूज है। नीज देखिए मजमून इकबाल की ज़िंदगी का एक पहलू इज़ मोहम्मद हनीफ शाहिद मतबूआ ज़ियाबार इकबाल नंबर 1973 सफ़ात 172-181 गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा। नंबर 58, गुफ्तार इकबाल मरतबा मोहम्मद रफ़ीक अफजल सफ़ात 2-3। नंबर 59, इकबाल और अंजुमन हमायत इस्लाम इज़ मोहम्मद हनीफ शाहिद सफ़ात 83-84। नंबर 60, गुफ्तार इकबाल मरतबा मोहम्मद रफ़ीक अफजल सफ़ात 3-4। नंबर 61, मकालात शिबली सफ़ा 8 सफ़ात 149-151 158-159 161-163 170-177। नीज देखिए कुलियात शिबली मरतबा मौलवी मसूद अली सफ़ात 46-74। मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल इस्तफ़ैल अहमद सफ़ात 381-382। नंबर 62, इकबाल नामा मरतबा शेख अताउल्ला हिस्सा दोम सफ़ात 365-366। नंबर 63, ऐज़न सफ़ात 35। नंबर 64, इकबाल इज़ अतिया बेगम अंग्रेज़ी सफ़ा 39। नंबर 65, ऐज़न सफ़ात 41-43। नंबर 66, ऐज़न सफ़ात 46-51। सफ़ा नंबर 338, बाब नंबर 9, अजवाजी ज़िंदगी का बुरहान। 1893 में इकबाल की करीम बी के साथ शादी रिवाज के मुताबिक इनके बुज़ुर्गों ने तय की थी और इनकी अपनी बाद की तहरीरों से ज़ाहिर होता है कि वो शादी पर रजामंद ना थे, मगर चूँकि 16 वर्ष की उम्र के लड़के थे इसलिए एहतराम के पेश नज़र इन्हीं अपने बुज़ुर्गों के सामने दम मारने की हिम्मत ना हुई। शादी के पहले 2 साल सियालकोट में गुजारे, इस दौरान में इन्होंने FA का इम्तहान पास किया और मजीद तलीम की तहसील की खातर 1895 में लाहौर आ गए। लाहौर में 4 साल क्वार्टरिंगल हॉस्टल में गुजारे। करीम भी हॉस्टल में इनके साथ तो ना रह सकती थी, इसलिए वो बेशतर वक्त अपने वालदैन के साथ या अपने मेके गुजरात में बसर करती थी और बाज़ात औक़ात चंद माह के लिए सियालकोट आ जाती। इकबाल गर्मी की छुट्टियां उमर सियालकोट में अपने वालदैन के साथ गुजारते और कभी कभार चंद हफ्तों के लिए अपने ससुराल गुजरात चले जाते। इस दौरान वो 2 बच्चों के बाप बन चुके थे। मराज बेगम 1896 में पैदा हुई और आफ्ताब इकबाल 1898 में। 1900 से लेकर 1905 तक की 5 साल मुलाजमत के दौरान जब इकबाल भाटी दरवाज़ा वाले मकान में रहायश पजीर थे, करीम बी ने इनके साथ इस मकान में क्याम ना किया। नज़ीर नियाज़ी की राय में करीम बी से कशीदगी की इब्तदा इन्हीं एजाम में हो गई थी। 1905 से लेकर 1908 तक के 3 साल इकबाल ने यूरोप में गुजारे। इनकी वापसी पर मराज बेगम 12 वर्ष की और आफ्ताब इकबाल 10 वर्ष के थे। नज़ीर नियाज़ी तहरीर करते हैं, यूरोप से वापसी के बाद अगरचा वो करीम बी हायानन लाहौर ना आती, मोहम्मद इकबाल इनका बड़ा ख्याल रखते, मगर एक दूसरे से कशीदगी बढ़ती चली गई। ताअंका बाप और भाई की कोशिशों के बावजूद मुकम्मल अलहदगी की नौबत आ गई। ये ज़माना मोहम्मद इकबाल के लिए बड़े अज़तराब का था। बग़ैर तलाक के चारा ना रहा, लेकिन वालदा आफ्ताब की इज़्ज़त नफ्स ने गुवारा ना किया कि मोहम्मद इकबाल कफालत के ज़िम्मेदार ठहरे। फरमाया, शरण मेरे सामने 2 ही रस्ते थे, तलाक या कफाफ की ज़िम्मेदारी। वालदा आफ्ताब तलाक पर राज़ी ना हुई, मैंने बाखुशी कफाफ की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। चुनच्चा एक मुकर्रर रकम हर महीने भेज देते, हत्ता के आखिरी अदालत के दौरान में भी ये रकम बकायदा रवाना की जाती। फिर जब अदालत ने तूल खींचा और माली दुश्वारियाँ बढ़ी तो इसमें तख़फीफ करना पड़ी, लेकिन रकम की तरसील में कोई फ़र्क ना आया। आखिरी मनी आर्डर मेरे हाथों से हुआ, मैंने तमील अरशाद कर दी। इकबाल की ये शादी क्यों नाकाम रही, इस सिलसिले में अक्सर ऐसी बातें कही गई हैं जो बिल्कुल लोग और बेबुनियाद हैं। शादी ब्याह एक इंतहाई निजी मामला है, कई शादियां नाकाम रहती हैं जिनमें फराकीन या इनके अज़ा व अकरबा मुख्तलिफ किस्म की नाइंसाफियाँ या गलतियों के मरतब हो सकते हैं। अफसोस है कि इस शादी के नाकामी के हकीकी असबाब बता सकने वाला आज कोई भी नहीं, लेकिन राकम के क्यास के मुताबिक शादी की नाकामी का असल सबब जौजैन के तबाही की अदम मुनासबत था। शादी के वक्त इकबाल की उम्र 16 वर्ष और करीम बीबी की उम्र 19 वर्ष थी। इकबाल तालिब इलम थे और माली एतबार से अपने बड़े भाई या बाप के दस्ते नगर थे। अभी अपने कदमों पर खड़े ना हुए थे। इकबाल का तलक एक मुवस्सत हाल ख़ानदान से था जिसके तमाम अफराद सियालकोट के एक छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन करीम भी एक अमीर घराने से तल्लक रखती थी और इन्होंने गुजरात के मोहल्ला शाह बाफा की एक ऐसी हवेली में परवरिश पाई थी जो किसी महल से कम ना थी। इनके वालद के ख़ानदान की शहर में बेहद इज्जत थी। इनके वालद डॉक्टर अता मोहम्मद ने इस ज़माने में डॉक्टरी की तलीम हासिल की और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के अव्वलीन संत याफ्ता तलबा में से थे। सफ़ा नंबर 340। बाद में सरकारी मुलाजमत अख्तियार की और तरक्की करते करते बुलंद उहदों पर जा पहुँचे। जद्दे में हुकूमत बरतानिया की तरफ से वाइस कौंसलर रह चुके थे। 1879 में वायसराय के अजाजी सर्जन मुकर्रर हुए। 1888 में इन्हीं खान बहादुर का खिताब मिला। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सिविल सर्जन तैनात रहे और जहाँ कहीं भी रहे बड़ी शान शौकत से रहे। ताहम डॉक्टर अता मोहम्मद दौलत की फरामानी के बावजूद बड़े दीनदार अबादत गुजार और नेक इंसान थे। हाफिज़े कुरान भी थे। इकबाल इनकी बड़ी इज्जत करते थे और इनकी वफात तक इकबाल ने इनसे तल्लुकात कायम रखे। अली बख्श के बयान के मुताबिक डॉक्टर अता मोहम्मद अपने फरजंद और इकबाल के बराबर निस्बती शेख गुलाम मोहम्मद को अला तलीम की तहसील के लिए इंग्लिस्तान जाने की इजाज़त ना देते थे। इकबाल ने डॉक्टर अता मोहम्मद की मिन्नत समाजत करके इन्हें इंग्लिस्तान भिजवाया, लेकिन इंग्लिस्तान से मेम ले आए और पहली मनकूबा बीबी को छोड़ दिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तलीम की तकमील के बाद जब इकबाल अपने कदमों पर खड़े हुए मुलाजमत अख्तियार करके भाटी दरवाजे वाले मकान में इन्होंने रहायश अख्तियार की तो इस वक्त भी करीम भी इनके साथ लाहौर ना आई। मुमकिन है इनका इसका सबब इकबाल की कम तनख्वाह हो जो इब्तदा में 72 रुपये 14 आने मुकर्रर हुई थी। 2 साल बाद 200 रुपये और 4 साल बाद 250 रुपये तक माहवार तक पहुँची। फिर इकबाल 3 साल के लिए यूरोप चले गए। यूरोप से वापसी के बाद इकबाल के लिए सबसे बड़ा मसला फराहमी रोज़गार था और ये ज़माना इनके लिए बिलाशुबा शदीद तजब्ब और इज़्तिराब का था, मगर इस ज़माने में बाप और भाई की कोशिशों के बावजूद इकबाल और करीम भी एक दूसरे के करीब ना आ सके। करीम भी बच्चों समेत अपने वालदैन के साथ रहना पसंद करती थी और इस सिलसिले में इकबाल की जो ज़हनी कैफियत थी वो अतिया फैजी के नाम इनके खत मुहर्रा 9 अप्रैल 1909 से ज़ाहिर है। लिखते हैं, मैं कोई मुलाजमत करना नहीं चाहता, मेरी ख्वाहिश ये है कि जल्द से जल्द इस मुल्क से भाग जाऊँ। इसकी वजह आपको मालूम है, मैं अपने भाई का एक किस्म का इखलाकी कर्जदार हूँ और सिर्फ इसी चीज़ ने मुझे रोक रखा है। मेरी ज़िंदगी नहायत मुसीबत नाक है। ये लोग मेरी बीवी को ज़बरदस्ती मुझ पर मान देना चाहते हैं। मैंने अपने वालिद को लिख दिया है कि इन्हें मेरी शादी कर देने का कोई हक ना था, बिलखसूस जबकि मैंने इस किस्म के तल्लक में पड़ने से इनकार कर दिया था। मैं इसकी कफालत करने पर आमादा हूँ, लेकिन इसे अपने पास रख कर अपनी ज़िंदगी को अजाब बनाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। एक इंसान होने की हैसियत से मुझे मसरत के हसूल का हक है। अगर मुआशरा या फितरत वो हक मुझे देने से इनकारी है तो मैं दोनों के खिलाफ बगावत करूँगा। मेरे लिए सिर्फ एक ही चारा है कि मैं इस बदबख्त मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ दूँ या मैं ख्वारी में अपना पनाह ढूंढूं जिससे खुदकुशी आसान हो जाती है। किताबों के ये बेजान और बिंजर और आग मसरत नहीं दे सकते। मेरी रूह के अंदर इस कदर आग भरी हुई है कि मैं इन किताबों और इनके साथ ही माशरती रसूम और रवायात को भी जलाकर खस्तर बना सकता हूँ। आप कहेंगे कि एक अच्छे खुदा ने यह सब कुछ तख्लीक की है, मुमकिन है ऐसा ही हो, मगर इस ज़िंदगी के तल्ख हकायक किसी और ही नतीजे की तरफ रहनुमाई करते हैं। ज़हनी तौर पर एक अच्छे खुदा की बजाय किसी कादर मतलब शैतान पर यकीन ले आना ज़्यादा आसान है। मेहरबानी करके ऐसे ख्यालात के इजहार के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हमदर्दी का ख्वास्तगार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी रूह का बोझ उतारना चाहता हूँ। इकबाल की इस शादी की नाकामी का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इनके दोनों बच्चे शफकत पदरी से महरूम रह गए। ऐसी सूरत में बच्चों की हमदर्दियाँ अमूमन माँ के साथ होती हैं। मराज बेगम और आफ्ताब इकबाल के बचपन और जवानी का बेशतर ज़माना माँ के साथ नंदिहाल में गुजरा। जब दोनों कुछ बड़े हो गए तो दादा और दादी के पास सियालकोट में रहने लगे। बाप के साथ तो इनकी मुलाकात शाज़ो नादर ही होती थी। इसके बावजूद इकबाल मेराज बेगम से बड़ी मोहब्बत करते थे और मेराज बेगम माँ बाप के तलुकात में कशीदगी पर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, बेबस थी। इन्हीं जवानी ही में खना जीर का मर्ज लाहक हुआ और 19 वर्ष की उम्र में 17 अक्टूबर 1915 को वफात पा गई। आफ्ताब इकबाल अपने दादा के मंजूर नज़र थे, इनका नाम भी शेख नूर मोहम्मद ही रखा था। लेकिन शफकत पदरी की अदम मौजूदगी में अपने ताया की सख्त तबीयत को इन्होंने कभी कबूल ना किया। जो जो वक्त गुजरता गया, आफ्ताब इकबाल के दिल में ये बात हमेशा के लिए बैठ गई कि इनकी माँ के साथ बाप ने नाइंसाफ़ी की है। नतीजन बाप बेटे के खिलाफ बढ़ते चले गए। इकबाल के बाद अहबाब की कोशिशों के बावजूद इनकी आपस की गलत फहमियाँ दूर ना हो सकी। ता अंका इकबाल की ज़िंदगी ही में बाप बेटे में कतई तलखी हो गई। नज़ीर नियाज़ी तहरीर करते हैं, बेशक ये शादी नाकाम रही लेकिन इसकी एक ही वजह थी और वो तबाए की अदम मुनासबत अली हाजा। ख़ानदानी हालात में तफाफत, मैं समझता हूँ कि रिश्ता अजलत में तय हुआ। फराकीन ने इस मामले में एहतियात से काम नहीं लिया। मोहम्मद इकबाल ने लाख कोशिश की कि निभा की कोई सूरत निकल आए मगर बात ना बने। एक तो वालदा आफ्ताब का अंदाज तबीयत, दूसरे आफ्ताब इकबाल की रवश, हालात बिगड़ते चले गए। डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह की कोशिशें भी कि इसलाह अहवाल की कोई सूरत निकल आए नाकाम रहीं। मोहम्मद इकबाल इस मामले में चौंके हक बजानब थे, लिहाजा शाह साहब और इनके दोस्तों ने इनकी इंसाफ पसंदी को देखते हुए फिर कभी इसमें दखल नहीं दिया। मोहम्मद इकबाल की इस शादी के बारे में भी अक्सर ऐसी बातें कही गईं जो सर बेबुनियाद हैं। जहां तक राकमुल हरूफ की ज़ाती मालूमात का तल्लक है, इसे ये कहने में बाक नहीं कि उमदाना ना सही बासबब नामनासब मजाज और अफ्ताज तब्दीयत गुजरात ने इस मामले में जो रवश अख्तियार की सरता सर गलत थी। आफ्ताब इकबाल भी बहक गए, बाप के खिलाफ एक महाज कायम कर लिया, अल्ज़ाम तराशियों से काम लिया गया। अतिया फयाजी की राय में शादी की नाकामी के सबब इकबाल की खुदादाद गैर मामूली काबिलियत नशोनुमा पाने की बजाय घट कर रह गई और अपने इलम को वसी करने के बावजूद इकबाल वो ना बन सके जो बन सकते थे। बल्कि इन वाक़यात ने जो इनकी ज़िंदगी के इस हिस्से में रूनुमा हुए इन्हें वैसा बना दिया जैसा कि वो अपनी तहरीरों में दिखाई देते हैं। अतिया फयाजी के नज़दीक माशरती रसूम और रवाज के तहत बुज़ुर्गों के हकाम की पाबंदी बहुत से गैर मामूली जहानत रखने वाले मर्दों और औरतों की ज़िंदगियां तबाह कर देती है और इकबाल की मिसाल एक ऐसा आलमी है जो इसी किस्म की ख़ानदानी ज़िद का नतीजा है। अतिया फयाजी तहरीर करती हैं, जैसा कि मैं इकबाल को यूरोप में जानती थी हिंदुस्तान में इनकी शख्सियत वैसी ना रही और जो लोग इतने खुश नसीब वाकया नहीं हुए कि इनकी इब्तदाई ज़िंदगी में इनसे मिले हों वो कभी कभी भी इस जहानत और काबिलियत का अंदाज़ा नहीं कर सकते जो फितरत की तरफ से इन्हीं वदियत की गई हो और जिसका इजहार वो कर सकते थे। हिंदुस्तान आकर इनकी जकावत तबाही और आबोताब को घुन सा लग गया और जो वक़्त गुजरता गया ये घुन इनकी सारी शौरी कुवत पर छा गया। वो अपने ख्यालात में चुंदियाई हुई ज़िंदगी बसर करते थे और पस्ती सी महसूस करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कुछ बन सकते थे। अतिया फयाजी का तबसरा हकायक पर मबनी नहीं है। बिलाशुबा हयात इकबाल का ये मुख्तसर सा दौर ज़हनी और रूहानी कर्ब का दौर था। यूरोप की यूनिवर्सिटियों में इकबाल की ज़िंदगी एक सफ़ा नंबर 344 ऐसे परिंदे की तरह थी जो अशियाने के तहफ़ की लज्जत से सरशार था और जो ज़िंदगी के तलख हकायक का सामना करना वक्ती तौर पर भूल चुका था। लेकिन वापस आकर इकबाल को इन तलख हकायक का सामना करना पड़ा और बाज़ औक़ात जब ज़हनी और रूहानी कर्ब अपनी इंतहा को पहुँचता तो इकबाल यूरोप के क़याम के ज़माने के बारे में रूमानी अंदाज से सोचते और अतिया फयाजी को तहरीर करते कि आह वो दिन फिर कभी लौट कर ना आएंगे। बहरहाल ज़हनी और रूहानी कर्ब की यह कैफियत महज आर्जी थी और इकबाल की गैर मामूली काबिलियत को मुस्तकिल तौर पर मफलूज ना कर सकती थी। इनकी तख्लीकी कुवतों की सीमत तो पहले से ही मुतय्यन थी, अलबत्ता शेर या नसर के लिबास में इनके अफशा होने का इंतजार था। अज़तराब की कैफियत तो महज रस्ते की रुकावट थी और इसका एक फ़ायदा यह हुआ कि इस तजर्बे ने इकबाल की शख्सियत को झुंझोड़ कर इन जर्मन अदब के मुताले के ज़ेर असर रोमानवी तर्ज की शायरी की गिरफ्त से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया क्योंकि इस मरहले को अबूल करने के बाद इन्होंने फिर कभी कभी की गोद में बिल्ली देखकर या फूल का तोहफा अता होने पर किस्म की नज़मों की तरफ रुजू नहीं किया। इकबाल की बाज़ यूरोपी मंजूमात या इन जैसी चंद नज़मों का जो वापस आकर लिखी गई शुमार अदब की इस्तलाह के मुताबिक रोमानवी शायरी में हो सकता है लेकिन बुनियादी तौर पर वो रोमानवी शायर ना थे। इसलिए यह इस्तदलाल के अगर इकबाल अज़तराब के इस मरहले से ना गुजरते तो बहुत कुछ बन सकते थे दुरुस्त नहीं। वो ख्वाह इस मरहले से गुजरते या ना गुजरते बनना इन्होंने वही कुछ था जो बिलाखर बने। इस दौर में फराहमी रोज़गार के साथ इकबाल अजवाजी सुकून की तलाश में भी सरगदां थे। यूरोप से वापसी पर इनकी उम्र 31 वर्ष की हो चुकी थी और पहली बीवी से कशीदगी की नागवार सूरतहाल तलाक में नहीं तो मुस्तकिल अलहदगी की शक्ल में ख़त्म हो चुकी थी। इकबाल के सामने हकीकी अजवाजी सुकून की दो मिसालें मौजूद थीं, एक आर्नल्ड का घर और दूसरी सर अकबर हैदरी और इनकी अहलिया की आपस में वाबस्तगी। सफ़ा नंबर 345। इकबाल आला तलीम से रास्ता होने के अलावा एक वजी सूरत के मालिक थे। सुरख चेहरा, कुशादा पेशानी, भारी अबरू, रोशन आंखें, सुतवा नाक, बारीक होंठों पर भूरी मूंछें, भूरे बाल, मियाना कद, मुतनासब जिस्म और नहायत नफीस हाथ। यूरोप से वापसी के बाद अमूमन स्याह सूट जेब तन करते और सर पर तुर्की टोपी ओढ़ते। कभी कभार माइकल एक आंख की ऐनक भी इस्तेमाल करते थे। इकबाल के हबाब को मालूम था कि वह दूसरी शादी के ख्वाह हैं और ये बात बाहर निकल चुकी थी। हैरत का मुकाम है कि इस कदामत पसंदी के ज़माने में भी इन शादी के सिलसिले में कई पढ़ी लिखी खवातीन के खतूत आया करते थे। बास खवातीन रिश्ते की खातर अपने कासद भी इनके तरफ भिजवाती और चंद एक तो इन्हीं मिलने भी आईं। इकबाल अगर चाहते तो ऐसे ही किसी आला तलीम से रास्ता खतून से शादी कर सकते थे, लेकिन रोशन ख्याल होने के बावजूद वह बाज़ मामलों में रवायती कदामत पसंदी को छोड़ने के लिए तैयार ना हुए। मालूम होता है कि इन्हें किसी ऐसी खतून की तलाश थी जो इनकी बीवी की हैसियत से, इनके ख़ानदान के अफराद से, इनके गहरे तल्लक और वाबस्तगी को कायम रख सके। दूसरी शादी के सिलसिला में जो 1910 में हुई, मिर्ज़ा जलालुद्दीन का बयान है कि इकबाल के दोस्त शेख गुलाब दीन वकील ने मोची दरवाजे के एक कश्मीरी ख़ानदान की साहबजादी के मतलब तहरीक की जो इस वक्त विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। जब बात पक्की हो गई तो इकबाल के बड़े भाई सियालकोट से आए और मिर्ज़ा जलालुद्दीन, मियाँ शाहनवाज, मौलवी अहमद दीन और शेख गुलाब दीन को साथ लेकर इकबाल के ससुराल पहुँचे और वहाँ इनका निकाह सरदार बेगम से पढ़ाया गया। इस मौके पर सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती अमल में ना आई। इसी सिलसिले में अली बख्श का बयान है कि वो और वालदा इकबाल इकबाल के रिश्ते की खातर किसी के घर गए। जब वापस आ रहे तो एक नायन जो सियालकोट की रहने वाली थी वालदा इकबाल से मिली। वालदा इकबाल ने इसे बताया कि वह अपने छोटे लड़के के लिए किसी मौजूद रिश्ते की तलाश में है। इस पर वो नायन वालदा इकबाल को सरदार बेगम के घर ले गई और वालदा इकबाल ने सरदार बेगम को देखते ही फैसला कर लिया कि ये रिश्ता बहुत मुनासिब है। सरदार बेगम से इकबाल के अकद के मतलब मुंशी ताहिरुद्दीन का बयान है जो इनके फरजंद शेख बशीर अहमद की वसासत से रकम तक पहुंचा, कदरे मुख्तलिफ है। इसके बयान के मुताबिक इकबाल अपनी बीवी का इंतखाब अवलन खुद करना चाहते थे। सरदार बेगम के ब्रादर ख्वाजा अब्दुल गनी मुंशी ताहिरुद्दीन के हबाब में से थे। दोनों बहन भाई मोची दरवाजे के एक गरीब कश्मीरी ख़ानदान से तलक रखते थे और बचपन ही से यतीम हो गए थे। वालदैन दोनों की परवरिश इनकी पुप्पो ने की। पुप्पा ज़िला कचहरी में अर्जी नवीस थे। सरदार बेगम किसी स्कूल में ना जाती थी बल्कि इन्होंने कुरान मजीद और ममूली उर्दू पढ़ने लिखने की तलीम घर पर ही हासिल की थी। ख्वाजा अब्दुल गनी क्लीन बेचने का काम करते थे। जब सरदार बेगम से रिश्ते के मतलब मुंशी ताहिरुद्दीन ने तहरीक की तो इकबाल ने साहबजादी की तस्वीर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुंशी ताहिरुद्दीन ने तस्वीर ख्वाजा अब्दुल गनी से ये कहकर हासिल की कि वालदा इकबाल को दिखाने के लिए सियालकोट भेजना है। इकबाल ने सरदार बेगम की तस्वीर देखकर इन्हें पसंद फरमाया। बाद में वालदा इकबाल सियालकोट से लाहौर आई और सरदार बेगम के घर जाकर रिश्ते की बात की। फिर इकबाल अपने बड़े भाई वालदा और चंद अहबाब समेत ससुराल पहुंचे जहाँ इनका निकाह सरदार बेगम से पढ़ाया गया। इन मुख्तलिफ रवायतों में से ख्वाह कोई भी दुरुस्त तस्लीम कर लीजिए, हकीकत यह सरदार बेगम किसी स्कूल में ना पढ़ती थी। इनका इकबाल से अकद 1910 में हुआ और इस मौके पर सिर्फ निकाह ही पढ़ाया गया, रुस्ती अमल में ना आई। रकम के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सरदार बेगम की उम्र 19 बरस के लगभग थी। रुस्ती का मामला इसलिए अल्तवा में पड़ गया कि निकाह के फौरन बाद इकबाल को दो एक गुमनाम खत वसूल हुए जिनमें सरदार बेगम के चाल चलन पर नुकता चीनी की गई थी। इकबाल शदीद तजब्बब में पड़ गए। ये ज़माना इनकी जहनी परेशानी का था। एक बीवी से अलहदगी हो चुकी थी, दूसरी के मतलब यह सूरत पैदा हो गई। हबाब से जिक्र किया, उन्होंने मामले की तह तक पहुँचने कि हमी भरी। बहरहाल इकबाल ने इरादा कर लिया कि सरदार बेगम को तलाक देकर कहीं और शादी करने की कोशिश करेंगे। इसी तजब्बब ने 3 साल मजीद गुजर गए। बिल आखिर इकबाल के एक पुराने दोस्त सैयद बशीर हैदर जो इस ज़माने में एक्साइज इंस्पेक्टर लुधियाना थे, लुधियाना के एक मतमोल कश्मीरी ख़ानदान के साहबजादी मुख्तियार बेगम के रिश्ते का पैगाम लेकर आए। मुख्तियार बेगम का ख़ानदान लुधियाना में नौलखियों का ख़ानदान कहलाता था। चुनाचा जब रिश्ता तय हो गया तो इकबाल की बारात लाहौर से लुधियाना गई। मिर्ज़ा जलालुद्दीन ने अपने बयान में इस शादी की तारीख का जिक्र नहीं किया। इसी तरह अब्दुल मजीद सालक ने भी इकबाल की इस शादी की तफसील बयान करते वक्त सन का जिक्र नहीं किया, लेकिन गालिब अमकान है कि यह शादी 1913 के इब्तदाई हिस्से में हुई। इकबाल मुख्तियार बेगम को साथ लेकर लाहौर पहुंचे जहां उन्होंने इनाल कली वाले मकान में क्याम किया। इसी असना में सरदार बेगम से मुतलक गुमनाम खतूत के सिलसिले में जब मिर्ज़ा जलालुद्दीन और इकबाल के दीगर अहबाब ने तहकीक कराई तो राज खुला के गुमनाम खतूत तहरीर करने वाला कोई वकील था जो सरदार बेगम की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहता था। सरदार बेगम ने जो इकबाल से अकद के सबब 3 साल तक तरह तरह के मसाइब बर्दाश्त करती रही, खुद भी जुरत करके एक खत इकबाल को भिजवाया जिसमें लिखा कि इन्हीं इस बुतान पर यकीन ना करना चाहिए था और ये कि मेरा निकाह तो अब आपसे हो चुका है, आप मैं दूसरे निकाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इसी हालत में पूरी ज़िंदगी बसर करूंगी और रोज़े क़यामत आपकी दामनगीर होंगी। इकबाल ये खत पढ़कर अपनी गलती पर सख्त पशमान हुए, मुख्तियार बेगम को सूरत हाल से बाखबर किया। वो नहायत नरम दिल और अलीम तबीयत की थी, किसी का दुख इनसे बर्दाश्त ना होता था। सरदार बेगम की बाबत सुनकर रोने लगी। बिलाखिर इकबाल सरदार बेगम को घर लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चूंकि एक मरहले पर दिल में इन्हीं तलाक देने का इरादा कर चुके थे इसलिए सरदार बेगम से अगस्त या सितंबर 1913 में दोबारा निकाह पढ़वाया गया। इन अयाम में मुख्तियार बेगम अपने मेके लुधियाना रवाना हो गई और इकबाल सरदार बेगम को साथ लेकर सियालकोट जा पहुंचे। चंद हफ्तों के बाद अनारकली वाले मकान में दोनों बीवियाँ इकट्ठी होगी। मुख्तियार बेगम और सरदार बेगम करीब करीब एक ही उम्र की थी और दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा होगी जो बहनों में भी नहीं होती थी। सरदार बेगम से शादी के मुतलक इकबाल अपने एक खत मुहर्रा 26 अक्टूबर 1913 बनाम महाराजा किशन प्रसाद में तहरीर करते हैं। तीसरी बीवी आपके तशरीफ ले जाने के कुछ अरसे बाद की ज़रूरत ना थी, मगर ये इश्क व मोहब्बत की एक अजीबो गरीब दास्तान है। इकबाल ने गुवारा ना किया कि जिस औरत ने हैरत अंगेज साबित कदमी के साथ 3 साल तक इसके लिए तरह तरह के मसाइब उठाए हों इसे अपनी बीवी ना बनाए, काश दूसरी बीवी करने से बेशतर ये हालात मालूम होता। इकबाल ने अपनी अजवाजी ज़िंदगी के मसले को सुलझाने की खातर पहली बीवी से अलहदगी इख्तियार की थी। वो करीम बी की जगह एक रफीका हयात के ख्वाहां थे, मगर हालात ने ऐसी सूरत अख्तियार की कि इन्हीं एक की बजाय दो बीवियों का शोहर बनना पड़ गया। अनारकली वाला मकान जिसमें इकबाल सिर्फ अली बख्श के साथ रहा करते थे 1913 में सियालकोट वाले घर की तरह खासा आबाद हो गया। मुख्तियार बेगम और सरदार बेगम के अलावा इकबाल की एक गैर आबाद बहन करीम बीबी यहीं रहने लगी। नीज शेख अता मोहम्मद की दो छोटी बेटियों अनायत बेगम और वसीमा बेगम को सरदार बेगम सियालकोट से अपने साथ ले आई। घर में चहल पहल होगी, सब के सब खुशी मुबसरत से दिन गुजारने लगे। इकबाल शाम को कामों से फरागत के बाद अपनी बहन और बीवियों के साथ अमूमन ताश या लूडो खेलते, अपनी भतीजियों के साथ हंसी मजाक की बातें करते या कोठे पर चढ़कर कबूतर उड़ाते। बीवियों और बहन के इसरार पर इकबाल ने अपनी पहली बीवी को भी बुलवा लिया। सो करीम भी एक आध बार अनारकली वाले मकान में आकर इन सब के साथ रही, मगर सिर्फ चंद दिनों के लिए। मर्दाने में पहले की तरह इकबाल के अहबाब की महफिलें लगती, ग्रामी आ जाते तो कई कई दिन क्याम करते। गर्मियों की तीलात में सब सियालकोट चले जाते और वहाँ रौनकें लगती। जुलाई 1913 में इकबाल के दोस्त महाराजा किशन प्रसाद लाहौर पहुँचे। इनके इस्तकबाल के लिए इकबाल स्टेशन पर मौजूद थे। महाराजा किशन प्रसाद के क्याम लाहौर के दौरान इकबाल का बेशतर वक्त इनके साथ गुजरा। वो इन्हीं साथ लेकर आगा हशर कश्मीरी के थिएटर में भी गए। इसी साल इकबाल रियासत अलोर गए। सर सैयद अली इमाम ने इन्हें बताया कि महाराजा अलोर को एक काबिल प्राइवेट सेक्रेटरी की ज़रूरत है और वे इस सिलसिले में महाराजा से इकबाल का जिक्र कर चुके हैं। इकबाल मुंशी तहरुद्दीन और अली बख्श के हमरा अलोर पहुँचे। मेहमान खाना शाही में ठहराए गए। महाराजा से मुलाकात हुई तो पता चला कि तनख्वाह 600 रुपये होगी। इकबाल के ख्याल में तनख्वाह कलील थी इसलिए खामोशी से लाहौर वापस आ गए। अपने खत मुहर्रा 1 अक्टूबर 1913 बनाम महाराजा किशन प्रसाद में तहरीर करते हैं कि महाराजा बहादुर अलोर की तर्ज गुफ्तार से तो यही मालूम होता है कि वो मुझे मुलाजमत में लेने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर प्राइवेट सेक्रेटरी की तनख्वाह इतनी थी कि मैं इसे कबूल ना कर सकता था। इसके अलावा गलबन इन पर जोर डाला गया कि इस जगह के लिए किसी हिंदू की तकर्री मुनासिब और शायद ये दुरुस्त भी हो, ये वजह थी कि मेरे अलोर ना जाने की। इन्हीं के नाम अपने एक और खत मुहर्रा 26 अक्टूबर 1913 में फरमाते हैं कि अलोर की मुलाजमत ना करने की एक वजह यह भी थी कलील तनख्वाह थी, 700-800 रुपये माहवार तो लाहौर में भी मिल जाते हैं, अगरचे मेरी ज़ाती ज़रूरियात के लिए तो इस कदर काफ़ी रकम बल्कि इससे भी ज़्यादा है। ताहम चूँकि मेरे ज़िम्मे औरों की भी ज़रूरियात पूरी करना है, इस वास्ते इधर उधर दौड़ धूप करने की ज़रूरत लाहक होती है। बड़े भाईजान जिन्होंने अपनी मुलाजमत का अंदूखस्ता मेरी तलीम पर खर्च कर दिया अब पेंशन पा गए हैं और इनके औलाद के अखराजात भी मेरे ज़िम्मे हैं और होने चाहिए। खुद 3 बीवियाँ रखता हूँ और 2 औलादें, गर्ज के मुख्तसर तौर पर ये हालात हैं जो मुझे बसा अवकात मजीद दौड़ धूप करने पर मायल कर देते हैं। महाराजा किशन प्रसाद इकबाल से लाहौर में मिलकर इनके इतने गर्विदा हुए कि हैदराबाद वापस पहुंचते ही इन्हें फिक्रे मुआश से निजात दिलाने के लिए इनके शायान शान वजीफे की पेशकश की। लेकिन इकबाल ने नहायत खूबसूरती से इनकी पेशकश टाल दी और इन्हें मुतज़क्किरा बाला खत ही में तहरीर किया। जो अनायत आप इकबाल के हाल पर फरमाते हैं, इसका शुक्रिया किस जुबान से अदा हो? दोस्त परवरी और गुरबत नवाजी आपके घराने का खासा है, क्यों ना हो? जिस दरख्त की शाख हो इसके साए से हिंदुस्तान भर मुस्तफीद हो चुका है। मैं तो अपना सामान यानी काश हाय दिल सद पारा ऐसे वक्त बाजार में लेकर आया जब सौदागरों का काफिला रुखसत हो चुका था। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आपकी जानब से बोए किसे आती है। आपकी फ्याजी के जमान मकान की कयूद से अशना नहीं, मुझको हर शय से मुस्तगनी कर सकती है। मगर ये बात मुरव्वत व दयानत से दूर है कि इकबाल आपसे एक बेश करार तनख्वाह पाए और इसके इवज में कोई ऐसी खिदमत ना करे जिसकी अहमियत बकदर इस मुशहरे के हो। खुदा को मंजूर हुआ तो कोई ना कोई ऐसी सूरत निकल आएगी कि इकबाल जो हमेशा से मानवी तौर पर आपके साथ रहा, सूरी तौर पर भी आपके हमराह होगा। आपने जिस वसत कल्ब से इकबाल को याद फरमाया, मुरव्वत की तारीख में यादगार रहने के काबिल है। इकबाल की ज़ात के मुतलक इनकी ज़िंदगी में मुखालफीन मुख्तलिफ किस्म के बहतान तराशने लगे थे, गो इन्होंने ऐसे लोगों की बातों की परवाह ना की और इन्हें कभी दरखोर अतना ना समझा। इनकी ज़िंदगी ही में इन पर शनाब नोशी का इल्ज़ाम लगा, इन्हें अय्याश जाहिर किया गया और ये मन गर्द किस्सा भी मशहूर किया गया कि अय्याम जवानी में वो एक तवाफ के कत्ल के मरतब हुए थे। इससे बेशतर के इकबाल पर आयद करदा इन इल्ज़ाम की तरदीद में कुछ कहा जाए, चंद सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। अव्वल ये कि इकबाल के मुखालफिन कौन थे, दोम ये कि इकबाल की किरदार कशी का मुहिम का आगाज कब हुआ, और जो सोम ये कि इकबाल खुद किस हद तक ऐसे बेबुनियाद इल्जाम की तशहीर के जिम्मेदार थे। इकबाल एक ऐसी हस्ती थे जिसने जवान उम्री में ही में अपने कस बल पर शोहरत हासिल की। ऐसी हस्तियां अमूमन जानने वालों के लिए हसद का सबब बनती हैं। बस जूं जूं इकबाल के हामी और अकीदतमंदों में इजाफा होता गया, इनके मुखालफिन की तादाद भी बढ़ती चली गई। इकबाल के मुखालफिन में पहला ग्रोह तो दिल्ली और लखनऊ के अहले जुबान का था। इन लोगों में से अक्सर ने लसानी तासब की बिना पर इकबाल के जदीद असालीब बयान में कीड़े निकाले, लेकिन इनके इतराजात का एक पहलू और भी था। मुतजर्रीन में बहुत अहले सुखन ऐसे थे जो तनज्जल के अहद की शायरी को अब तक सीने से लगाए बैठे थे और जिनके नज़दीक मै नोशी और तवाइफों से इश्क के बगैर शायरी नामुमकिन थी। वो इकबाल की दूरे अहया की शायरी से मानूस ना होते थे, इसलिए इकबाल के मुतलक ऐसी बातें उड़ाते रहते जिनसे जाहिर हो कि इकबाल इन्हीं की तरह का शायर है। इसी सिलसिले में पंडित शिव नारायण शमीम का बयान गौर तलब है, तहरीर करते हैं। स्टेशन पर एक शायर जलाल साहब बकौल खुद तलमीज अमीर मिनाई मिल गए। उन्होंने मुझे उर्दू बोलते सुनकर समझा कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। बहम तारफ हुआ और चै मगोइयाँ होने लगी। जब मैंने बताया कि मैं लाहौर रहता हूँ तो आपने फरमाया कि हज़रत इकबाल का क्या हाल है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं गाहे गाहे नज़म की इसरा इनसे लिया करता हूँ। बकौल इनके इकबाल ने कबूतर पाले हैं, बैरिस्ट्री से मुनरफ हो गए हैं। कहते थे कि वो और हम खूब एक दूसरे से वाकफ़ हैं, आगरे में इनसे खूब इख्तलात रहा है। वो मुझे रंगीन मिजाज मालूम हुए, मैंने इन्हें बताया कि आपको किसी ने गलत बताया है। हज़रत इकबाल रोज़मर्रा कचहरी आते हैं और वकालत करते हैं, नज़म रिगारी इनका शुगल सानी है, आप फारसी में ज़्यादा लिखते हैं। मैंने इनसे ये भी कहा कि इकबाल दरअसल हिंदुओं की दौलत थी जो आपके कब्ज़े में चली गई। शायर साहब कदरे मतहैर हुए। इकबाल के मुखालफिन में दूसरा ग्रोह जो रफ्तार रफ्तार तादाद में बढ़ता चला गया, कम इलम या तंग नज़र उलमा का था। इकबाल इस्लाम से मुतल्लक सर सैयद अहमद खान की इनकलाब अंगेज़ तहरीरों से आशना थे और इनके मदा भी थे, लेकिन जहाँ तक सर सैयद अहमद खान के मजहबी और सियासी अफकार का तल्लक है, वो समझते थे कि इसमें इसलाह की गुंजाइश। इकदामत पसंद उलमा शुरू ही से सर सैयद अहमद खां के खिलाफ थे। इनकी निगाह में जो कोई भी वक़्त के जदीद तकाजों के मुताबिक इल्म कलाम या फिक्का की ताबीर की ज़रूरत का जिक्र छेड़ता, वो बिदती और मगरब ज़दा करार पाता।